नमस्कार। अभी तक जो हमने बातें की हैं उसमें बच्चों पर बात कर रहे थे और ये समझ में आया कि हमारे जीवन में जो तनाव चल रहा है, जो बातें आ रही हैं, उसका एकदम सीधा असर जो है वो बच्चे पर पड़ रहा होता है। कई बार बात मन में यह आती है कि अगर बच्चों पर सीधा असर पड़ रहा है तो जो सिचुएशंस हैं उनका क्या करना चाहिए। ये सब बातें और भी बहुत कुछ हम जानेंगे साथ मिलकर। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा। जो भी पूरे माहौल घर में है, हमारे जीवन में जितना भी तनाव है, नोइंगली अननोइंगली वो पूरा का पूरा बच्चों पे जा रहा है। और आज के वक्त में देखें बहुत सारा कुछ बदल गया है। फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है, डिवोर्सेज इतनी जल्दी हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है, एक पेरेंट को यूएस जाना पड़ रहा है, कोई ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो जाती है। इतने सारे सर्कमस्टांसेस तेजी से बदल रहे हैं जिनका हमारे जीवन में तनाव हमारे जिनके कारण बढ़ रहा है, और सर्कमस्टांसेस अपने आप में ही काफी सारा स्ट्रेस लेकर आते हैं। अब ऐसे में पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या ये है, उसका प्रभाव बच्चों पर कैसे ना पड़ने दें। व्हाई इट हैज बिकम सो टफ टू टेक दिस डिसीजन, डॉक्टर अवधेश, इज इट पॉसिबल टू टेक अ बैक सीट फ्रॉम माई प्रोफेशन टू टेक केयर ऑफ माई फैमिलीज इमोशनल हेल्थ फॉर बोथ फादर एंड मदर?
कुछ ऐसी चीजें हैं जिनपे की कम कंट्रोल है, एक्सटर्नल है, किसी की डेथ हो गई या कोई बहुत बीमार हो गया या किसी को बिजनेस में अचानक सर्कमस्टांसेस बने, घाटा हो गया, या कुछ कई बार ऐसी जॉब्स होती हैं जैसे कोई ब्यूरोक्रेट है तो उसको वहां पे 3 साल के लिए या कुछ समय के लिए जाना पड़ता है, लेकिन बाकी डिसीजंस लोगों के अपने हाथ में होते हैं। जब तक उनको लगता है कि उनको फैमिली से कोई प्राप्ति हो रही है तो ये बैलेंस बनाना आसान हो जाता है। व्हेन वन पर्सन फील्स कि जो मैं चाहता हूँ, चाहे वो चाहना गलत हो, लेकिन उसको लगता है कि मुझे उतना नहीं मिल रहा, तो फिर वो दूसरी जगहों पे कंपनसेट करने की कोशिश करता है। और कई बार लोगों की अपनी इतनी इच्छाएं होती हैं कि वो दूसरों की इच्छाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक छोटी सी मूव स्पेशली करियर के लिए या पैसे के लिए जब वो होती है तो वो दूसरों पे असर डालती है। कई बार कुछ फैमिलीज में बच्चे भी, खासतौर पे जो थोड़े बड़े हो गए, एडोलेसेंट हो गए, या जो वाइफ जो पढ़ी लिखी है या थोड़ी सी ज्यादा अपनी ओपिनियन को बता सकती है, वो अगर बात करती है और हस्बैंड नहीं सुनना चाहता तो कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं, विच इज अ वर्स्ट सिचुएशन, क्योंकि वो भी बच्चे के ऊपर तो असर डालती है, माँ बाप के ऊपर भी डालते हैं। और अगर वो चुप करके सहते रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं तो अगेन फैमिली टूटनी शुरू हो जाती है। प्रॉबेबली इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर कोई फैमिली में एक हिस्सा बनके अपनी ओपिनियंस को इन अ वेरी नाइस वे कम्युनिकेट करे और दूसरा व्यक्ति भी उन्हें इक्वल पार्टनर, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो कमा रहा है वही सिर्फ घर का मुख्य है लेकिन बाकी सब जो है वो अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी बात भी सुने। जब ऐसा होगा तो स्ट्रेसेस कम होंगे, जब ऐसा होगा तो जो बाहरी स्ट्रेसेस हैं उनको एज अ कोहेसिव फैमिली इकट्ठा बैठ के डिसाइड करना या कोई क्राइसिस भी है तो उसको संभाल पाना ज्यादा होगा, आसान होगा। वहां पे जो हम वैल्यू सिस्टम्स देते हैं बच्चों को और जो वैल्यू सिस्टम्स खुद मानते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम छोटे मोटे साइकोलॉजिकल इश्यूज के आसपास घूमते रहते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेकिन जो कोर वैल्यूज हैं, जो कि फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एक रिलेशनशिप के लिए, चाहे कपल्स की हो चाहे बच्चों के साथ हो, और स्पेशली जब वो बच्चे एडोलेसेंस की तरफ चले जाते हैं तो देन दे आर लाइक फुल एडल्ट, दे वॉन्ट टू बी ट्रीटेड लाइक अ फुल एडल्ट। तो अगर वो हम नहीं देते तो फिर एडोलेसेंट्स में क्राइसिस होनी शुरू हो जाए।
प्रायोरिटाइज आपको क्या चाहिए, तो इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल जो स्ट्रेंथ है उससे मुझे प्राप्ति नहीं हो रही है। जो मिल रहा है घर में वो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा जो मेरी अचीवमेंट से प्राप्ति हो रही है। व्हाई वी हैव शिफ्टेड?
एक पहले जो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ कहे जाते थे, आई वुड से दैट दे वर टोटली करेक्ट, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, नॉट एज रिलेटेड, कि आपने पहले पढ़ाई की, उसके बाद आपने परिवार को संभाला, اس کے بعد آپ نے وڈرا کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی کہاں پہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. حالانکہ جو وان پرست ہے اور جو سنیاس ہے, سنیاس ڈزنٹ مین لیونگ ایوری تھنگ بٹ اٹ مینس وڈراوئنگ انٹو یور سیلف اینڈ سیئنگ ویئر یو آر گوئنگ. وہ کسی بھی ایج پہ ہو سکتا ہے, پیرلل بھی ہو سکتا ہے.
تھرڈ فیز جو تھا وہ ایکچولی سوشل ورک تھا بیسیکلی.
یا
فورتھ ورک سنیاس,
آپ کی اپنی ضرورتیں پوری ہوئی اور آپ
دینا شروع کر رہے.
وہ پہلے کیونکہ پوری زندگی میں پروگرامنگ ہوتی تھی, تو اس فیز میں جس کو گرہست کہا جا سکتا ہے اس میں لوگ 20-25 سال لگاتے تھے بچوں کو پڑھانے میں, بچوں کو ٹائم دینے میں, پھر ان کو بڑا کرنے میں, پھر شادی کرنے میں. ابھی کیا ہے, ایوری بڈی وانٹس کہ یہ سارا پروسیس 30-35 تک کمپلیٹ ہو جائے. جب تک وہ ساری چیزیں ایکوائر کر لیں, وائس پریزیڈنٹ آف اے کمپنی بن جائیں یا سب سے اچھی زندگی اس سمے جی لیں, مکان بھی ہو, گاڑی بھی اچھی سے اچھی ہو, اینڈ یو نو ایوری تھنگ ہیز بین اچیوڈ.
اچھا, اور ایک نہ ہو, کئی گاڑیاں ہوں, کئی گھر ہوں,
اس میں کہیں نہ کہیں ایک انسیکیورٹی دکھتی ہے, بیکاز یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود واٹ یو ہیو اینڈ یو فیل کہ یور نیڈز آر گوئنگ ٹو انکریز. یو آر ناٹ شیور کہ وہ رہے گی یا نہیں رہے گی. یو وانٹ ٹو گیو دیٹ ٹو یور چلڈرن. لیکن جس بچے کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں, اس کا جو بچپن ہے جو وہ کبھی واپس نہیں آنا, وہ سارا پیریڈ اب اس طرف چلا گیا. نو بیکاز آف دیٹ وین چلڈرن اسٹارٹ سیئنگ دیٹ ہیپن, ون از دیٹ دے آلسو ریئلائز کی شاید کریئر اور پیسہ سب سے امپورٹینٹ چیز ہے. یو کین ڈیلیگیٹ دا فیملی ٹو تھرڈ فورتھ ففتھ پلیس. تو ان کے لیے بھی پھر فیملی امپورٹینٹ نہیں رہتی. دے آلسو ناؤ اندر تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ از کہ بچوں کو اپنے آپ مست رہنے کے لیے جاب کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی ہے, ورچوئل فرینڈس ہیں, گیمس ہیں, یا اپنا ہی ایک دنیا ہے جس کو بھی وہ بڑھا سکتے ہیں. So they also start withdrawing from families. Many a times when parents are in stress, they turn towards children, especially adolescents. لیکن اگر آپ کا ان سے وہ رشتہ شروع سے نہیں بنا ہوا ہے تو آپ کو وہاں سے بھی سپورٹ نہیں ملے گی. اینڈ دین دیز آر مے بی 2-3-4 پیپل لیونگ ان آئسولیشن انڈر دا سیم روف. بیکاز آف دیٹ آلسو دا اسٹریس از ملٹی پلائی.
دس از واٹ نا, اگر ہم نے یہ الگ الگ اپنے بنا رکھے ہیں, الگ الگ کمرے بنا لیے ہیں, الگ الگ ورلڈ بنا لیے ہیں, اور ایک ہی چھت کے نیچے ہم رہ رہے ہیں, اس کا میرے بڑھتے ہوئے بچے پہ, ہم نے چھوٹے بچے کی تو بات کی تھی, یہ جو نا پرائیورٹی دے پانا, آج اس پریوار سے مجھے پراپتی نہیں ہو پا رہی تو میرے بچے کو کیسے ہوگی, یہ نہیں مجھے سمجھ پا رہا. اس کا بچے پہ کیا اثر پڑے گا جو بڑھتا ہوا بچہ ہے؟
جو بچہ ہے, ہم کئی بار نا جو بچے ہیں اور جو ایڈولیسنٹس ہیں ان کو ہم الگ الگ سمجھ لیتے ہیں. ویئر از ایکچولی اٹ از دا چائلڈ گروئنگ ان ٹو ایڈولیسنس. سو اس کے پاس جو ہے, چاہے وہ اسٹریسز ہے, چاہے وہ سیلف اسٹیم ہے, چاہے وہ فیلنگ ایکسپٹیڈ ہے, چاہے وہ فیلنگ ریجیکٹڈ ہے, وہی چیز اس کی پرسنالٹی کے ساتھ ایڈولیسنس میں بھی آئے گی. ناؤ الانگ ود دس دیر آر نیو تھنگز دیٹ ہیپن, باڈی چینجز, ہارمونز چینج, ایموشنز چینج, سیکسل فیلنگز چینج, دوسروں سے کنیکشن بنانے کی اچھا ہو سکتی ہے, آپ انسٹیٹیوشنز میں جانا شروع کرتے ہو, یو اسٹارٹ بیکمنگ مور لائک این اڈلٹ. اور اس سمے میں ون آف دا پارٹ آف بیکمنگ این اڈلٹ از دیٹ یو وانٹ ٹو گیٹ اوے فرام ادر اڈلٹس, اسپیشلی پیرنٹس, کیونکہ پیرنٹس آپ کو بچہ بنا رہے ہیں اور آپ اڈلٹ بننا چاہتے ہیں, تو یہ ایڈڈ پریشرز ہیں. لیکن اگر وہ بچپن سے بھی وہ پریشرز لے کے آئے ہیں اینڈ ایز اے فیملی پیپل ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سیٹ ڈاؤن اینڈ سارٹ دیز ایشوز آؤٹ اور گیو دیٹ فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ, ہیپینس, پیس, کوآپریشن, اور ایٹ لیسٹ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ اباؤٹ دیز ایشوز, تو پھر وہ جو ڈسٹینس ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. یہی وہ سمے بھی ہے جبکہ عام طور پہ ایکسپیریمنٹیشن شروع ہوتی ہیں, ایکسپیریمنٹیشن ود یور باڈی. تو کچھ ایڈولیسنٹس میں وہ ڈریسز ایسی پہنے یا ٹیٹوئنگ کروائیں یا ہیئر اسٹائل ایسا ہو, یا آج کے سمے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا ٹائم ایک بالکل الگ ہے, سونے کا, جاگنے کا, کھانا کھانے کا, یا ان کی ایکٹیویٹیز بالکل الگ ہیں. they want to become more secretive, so they want to be shutting the door, they want to talk to their friends at their own time, jo ki parents nahi samajh paate. But this is also the time when certain kinds of mental illnesses can start. We know that depressions, bipolar disorders, schizophrenia, they can start in this age group. तो ये एक बड़ा एक ऐसा पीरियड है जिसमें एडोलेसेंट भी स्ट्रेस से गुजर रहा है, पेरेंट्स अपनी जिंदगी के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्शन नहीं हो पा रहा और उस वजह से जो परेशानियां हैं विदाउट बीइंग एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर वो बढ़ती जाती है. एंड दैट इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफिकल्ट एडोलेसेंट पीरियड.
और इनफैक्ट अगर इसमें देखें तो जब छोटा था बच्चा तो वो अनकंडीशनली दे रहा था क्योंकि उसके ऊपर इतने स्ट्रेसेस नहीं थे. तभी हमें भी वापस घर आना, हमारे भी अपने स्ट्रेसेस कम हो जाते थे जब हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते थे. इस वक्त बच्चा ही इतना डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज यू नो इट्स सो डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड.
आई वुड नॉट इवन से डिफिकल्ट हो गया है, बट आई विल से डिफिकल्टी से गुजर रहा है
इन द सेंस उसके. हाँ मतलब वही बात. अब ये जो फेज है एडोलेसेंस का, इसमें जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन है, उसका उसकी जो एडल्टहुड की पर्सनैलिटी होगी इस पूरे फेज का, उसका कितना असर पड़ता है? बिकॉज ये एक बहुत फियर रहता है पेरेंट्स को कि अगर इस वक्त वो इसमें चला गया, वो इसमें चला गया, वो इसमें चला गया, सारा जीवन वो ऐसा रहेगा.
कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. अगर वो मान लीजिए रास्ते से भटक गया और उस समय ये भी डेंजर होता है.
ये भी
है.
बड़ा क्लीशे वर्ड है, व्हाट इज भटकना. रास्ते से
भटकने का मतलब ये है कि वो चीज जिससे कि उसकी जिंदगी पर, फैमिली की जिंदगी पर और समाज पर कुछ मेजर असर हो जाता है. अगर आज उसने फटी हुई जीन्स डाली हैं, अपने बालों को 3 कलर में कलर किया है, तो शायद खास फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन अगर वो ड्रग्स ले रहा है और फिर ड्रग पेडलिंग शुरू कर रहा है, तो उसका उसके और पूरी फैमिली एंड समाज के ऊपर असर होने वाला है. अगर वो आज किसी ऐसी तरह की एक्सपेरिमेंटेशन सेक्स के साथ कर रहा है, स्पेशली विद टेक्नोलॉजी टूडे, उसकी कुछ फोटोग्राफ्स कहीं सर्कुलेट होती है, तो उसकी जिंदगी के ऊपर आगे जाके बहुत असर हो रहा है. मान लीजिए आज वो आपसे थोड़ा सा गुस्से से बात करता है, वो कहता है लीव मी अलोन फॉर सम टाइम, पर अदरवाइज वो ठीक ठाक है, तो उससे कोई खास असर नहीं हो रहा. ही विल और शी विल ग्रो आउट ऑफ इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन हाँ, अगर ये लगातार चल रहा, अगर ये सब एरियाज में चल रहा है, यानी वो आपसे भी विड्रॉ कर रहा है, स्कूल कॉलेज से भी विड्रॉ कर रहा है, फ्रेंड्स से भी विड्रॉ कर रहा है, कोई सोने जागने का समय नहीं है, या उसकी एक्टिविटीज बहुत ऑड हो गई हैं, या उसने बहुत ज्यादा वेट लूज किया है, या उसकी बातें बहुत अजीब सी हो गई हैं, देन दैट्स अ डेंजर साइन. उसका उसकी जिंदगी पर, उसकी पर्सनैलिटी पर, या इवन नॉर्मल रहने पर बहुत असर पड़ रहा. सो वी डोंट हैव टू जम्प टू एवरी चेंज इन एन एडोलेसेंट एंड येट बी देयर एज अ वॉचफुल पर्सन. Not as a parent like a hawk, but as a person who cares and who's available for
who's present,
anything,
yeah.
And who's present along with acceptance, along with love unconditionally. ये कई बार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है पेरेंट्स के लिए क्योंकि वो अपने कई झमेलों से आई वुड से गुजर रहे होते हैं और उनके लिए उनको साइड पे रख के और एडोलेसेंट को समय देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
और इनफैक्ट जो आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा, यू नो इट्स नॉट हैपनिंग टू आवर चाइल्ड.
कई बार एडोलेसेंट्स अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, एडल्टहुड है, उसको दिखाने के लिए भी कुछ चीजें करते हैं और उसका एक हिस्सा उनके लिए ये भी होना चाहिए टू बी एबल टू हैंडल स्ट्रेसेस इन अ वे जो कि उनको या दूसरों को डैमेज ना करे. दैट्स बीइंग एन एडल्ट. तो वो प्रोसेस जो है सीखने का, वो भी यहीं से आना शुरू हो सकता है कि एडवर्सिटीज में आप अपने आप को कैसे स्टेबल रख सको, क्योंकि उनकी आने वाली जिंदगी में भी आगे जाके भी कुछ ना कुछ और स्ट्रेसेस प्रेशर्स तो आएंगे, तो व्हाई नॉट स्टार्ट दैट राइट देयर एंड देन विद देयर ओन सेल्फ.
एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट, यू नो, बाकी चीजों की रिसर्च कर सकते हैं, तो इसकी भी रिसर्च की जा सकती है. दे कैन एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग फॉर आंसर्स रादर देन यू नो लाइक लुकिंग फॉर डिस्ट्रैक्शंस. ڈاکٹر اوادھیش شرما تھینک یو سو مچ, بیکاز اٹس ویری امپورٹینٹ کہ ہم کنٹینیوسلی ایک بلیم گیم میں رہنے کے بجائے خود اپنے اوپر اپنے ہاتھ میں کنٹرول لینا شروع کریں. تھینک یو سو مچ.